अब हज़रत इब्राहिम की कहानी से सबक। असल में सूरत मरियम एक एल्बम है, सफ़े पलटते जाएंगे और अल्लाह ताला कहते आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कौन कैसे क्या है वो है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम से हमें क्या सिखाना है, आइए सुनते हैं। वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो इस किताब में, बेशक वो एक रासबाज इंसान और एक नबी था। इन्हें ज़रा इस मौके की भी याद दिला दो जबकि इसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान आप क्यों इन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं और ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं। अपने से बड़ों को तबलीग करनी है ना तो ऐसे करें, डूज एंड डोंट्स में ना करें। अमर के सीखे ना बोले अब्बू ये करें, अम्मी आप ये नहीं करें, नहीं अब्बा ये क्यों करते हैं, अम्मा इससे क्या होता है, अम्मा ये गुंडे क्या होते हैं, अम्मा ये 10 बीवियाँ कौन थी, इस तरह बात करें ताकि वो भी तो सोचें। और जिससे मोहब्बत होती है ना बंदा उसको गलत बात करता देख कर रोकता ज़रूर है, सिर्फ ये देखना होता है कि अंदाज़ क्या है। या अबती अंदाज़ कितना प्यारा, आप देखिए, अब्बा जान मेरे पास आ गया वो इल्म जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पीछे चले मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। ये कौन सी औलाद कहेगी कि अम्मी मैं कुरान पढ़ती हूँ ना, मामा मैंने कुरान में पढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ। ये है कॉन्फिडेंस औलाद का। तो अगर आप में से भी कोई कुरान पढ़ ले और कोई ऐसी बात देखे जो अम्मी अबू कर रहे हैं और नहीं कर रहे जो भी, तो ऐसे प्यार से कहें मामा मैंने कुरान में पढ़ा है, अब्बू ये बात अल्लाह ने कही है, फिर आप देखेंगे उनके भी दिल में आएगा शौक कि हम कुरान ही क्यों ना पढ़ लें। और अगर आप अपने ऊपर बढ़ाई लेंगे तो हो सकता है उनको गुस्सा आ जाए। अब्बा जान अब शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुबतला ना हो जाएं और शैतान के साथ ही बनकर रहें। बाप ने कहा इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गए। अब देखिए बाप को गुस्सा आएगा, तो जिन माँ बाप ने भी कुरान नहीं पढ़ा होता ना उनको गुस्सा आ सकता है, तो आप बर्दाश्त कीजिए कोई बात नहीं। अगर तू बस ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। यहाँ देखिए पढ़ी लिखी औलादें कितनी फरमाबरदार होती हैं और दीन से दूर माँ बाप कितने सख्त दिल होते हैं, कहते हैं मुझे मुझसे शक्ल गुम करो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तो सब्र करें औलादें उनको अजर मिलेगा। और क्या कहें, रब इरहम हुमा कमा रब यानी सहीरा। कभी आपको अपने माँ बाप के बीच अंदर कोई ऐसी आदत दिखे ना जो आपको लगता है कि उनमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब आपकी वो सुनते नहीं क्योंकि तरबियत नहीं करनी हमने उनकी, तो फिर आप दुआ करें अल्लाह जी आप इनको समझाएं, अल्लाह ताला मेरी माँ में ऐसी बात क्यों है, अल्लाह मेरे अब्बू ऐसे क्यों करते हैं, अल्लाह ताला मैं तो नहीं उनको बता सकती ना, आप तो बता सकते हैं। इसी तरह अपने से बड़ों के लिए ये बातें करें, किसी भी बड़े को जिसको आप सोचते हैं ना कि आप नहीं कह सकते, आप उसके लिए दुआ करें। और वाकई अगर आपकी बात सच्ची होगी तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर सकता है आपके हक़ में। इब्राहिम ने कहा सलाम है आपको, बाप क्या कहते हैं चले जाओ नज़र से गुम हो जाओ, बेटा क्या कह रहे सलाम है आपको। ये हम्बल औलाद कब होती है, जब कुरान से जुड़ती है। मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि आपको माफ़ कर दे, इन्नहु काना बी हफिया, वो मेरे साथ बड़ा मेहरबान है। कौन, इब्राहिम को अपने ताल्लुक बिल्ला पर कितना मान है, कहते हैं मेरे अल्लाह से बड़े अच्छे ताल्लुक आता है, मैं आपके लिए भी दुआ कर दूंगा। ये तो एक बात हुई ना। और अगर आपके अच्छा चूंकि इब्राहिम का बाप हूँ तो मैं जो भी कर लूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, ये नहीं होता। इब्राहिम अपने ताल्लुक की बात कर रहे हैं, कोई हमारा भी अल्लाह ताला के साथ ऐसा प्यार है कि अल्लाह ताला मान जाए ना मेरी बात, मैं फिर किसको कहूँगी, अल्लाह ताला मेरा कौन है जिससे मैं कहूँ। वो एक बाप था ना तो बच्चा पीछे पड़ गया, अब्बू साइकिल ले दो अब्बू साइकिल ले दो, बाप को बड़ा गुस्सा आया डांट दिया चलो भाग जाओ, मैं इसलिए नहीं कमाता पैसे कि तुम्हें खिलौने लेके दूँ। तो बच्चा वहाँ से उठ के दूर जाके रोने लगा हिचकियाँ लेते हुए, आप ही तो मेरे अब्बू हैं, आपको नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। बस ये जुमला बाप का दिल नरम कर गया, कहने का वाकई ये मासूम सा बच्चा मुझे नहीं कहेगा तो किसको कहेगा, चला उसको ले गया और जाके साइकिल ले दी। जो ये तो बाप बेटा है ना, अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है। तो अल्लाह से प्यार किया करें, इन्नहु काना बी खफिया, आप में से कितने कहते हैं कि आपके साथ अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अल्लाह बड़ा मेहरबान है, ये उसका रहम है कि आज हम जी रहे हैं अपने गुनाहों के बावजूद। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ और इन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग खुदा को छोड़कर पुकारा करते हैं। इसको नोट करें, आजजी अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, तड़पना अपनी जगह, बाप के लिए दुआ करना अपनी जगह, लेकिन उनकी खुशी के लिए गलत काम नहीं किया। हम कहते नहीं फिर अब्बू को खुश करने के लिए मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, अब अम्मी की ये ख्वाहिश है तो अम्मा तो नाराज़ हो जाएंगी, नहीं अम्मा अम्मी नाराज़ है आपकी गलत बात मैं नहीं मानूंगा। ये है असल में बेस्ट कॉम्बिनेशन, जुबान से नरम बात में फर्म, बात अपनी सच रखें, बात नहीं अल्लाह की माननी है लेकिन उनके साथ नरमी से बात करें। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार के ना मुराद ना हूँ। पहले किसने कहा था ऐसी बात? हजरत ज़करिया ने। तो लगता है ना कि सब नबी एक दूसरे से मिलते जुलते थे, उनके अकायद देखते। आप भी कहिए कि मैं अपने रब से मांग कर कभी मायूस नहीं हुई। बस जब वो इन लोगों से और इनके माबूदान गैर अल्लाह से जुदा हो गया, तो हमने इसको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी, और हर एक को नबी बनाया, और इनको अपनी रहमत से नवाजा, और इनको सच्ची नामवरी अता की। ज़रा इसको गौर से देखिएगा, जब उन्होंने अपने बाप दादा के गलत तरीक़ों को छोड़ा तो अच्छी औलाद मिल गई। समझ आई आपको? कुछ छोड़ें तो बदले में मिलता ज़रूर है, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ। जब कुछ छोड़ा आपने अल्लाह के लिए, किसी जगह चोट पड़ी आपके शौक पे, आपकी किसी चीज़ की कुर्बानी मांगी, को हिजरत मांगी, उसके बाद अल्लाह आपको देगा बहुत। याद रखिए कि अल्लाह ताला के इनामात कुर्बानियों की ज़मीन पर होते हैं। जब आप मैं कुछ छोड़ते ही नहीं, तो फिर अल्लाह हमें क्यों दे? तो अपने लिए ये नियत कीजिए कि हर गलत चीज़, आदत और माहौल और ऐसी खराबियाँ मैंने अल्लाह के लिए छोड़ दी हैं, और उसके बदले में क्या मांगे? अल्लाह से कुरान ही मांग लें, अल्लाह से हिदायत मांग लें, अल्लाह से सच्ची नामवरी मांग लें, अल्लाह ताला देने पे कादिर है। और ज़िक्र करो इस किताब में मूसा का, वो एक चुना हुआ शख्स था, रसूल और नबी था। वनादैनाहु मिन जानिब तूर अल-अयमन। क्या कभी कभी हज़रत मूसा से जेलस नहीं फील होता? हर सूरत में आ जाते हैं, हर पारे में जो मूसा जी हैं, और आपको तो 30वें पारे में भी हैं, सूरत आबस में भी हैं। तो किसका नाम बड़ा मां की ज़ुबान पर रहता है जी? किस बच्चे का नाम बड़ा लेते हैं? जिससे प्यार ज़्यादा होता है। तो अल्लाह को तो ना कोई मिसाल से हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि अल्लाह को मूसा से प्यार बड़ा है। वाकई कलीम अल्लाह थे, कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा। कभी अल्लाह हमारा भी जिक्र करता होगा आसमानों पे? कभी सोचें, दुआ करें अल्लाह कोई काम ले ले, कोई छुपा हुआ काम, कोई ऐसा काम जो दूसरे ना करें और तू हमसे ले ले। वना दैना हमिन जानिब तूर अल-अयमन, और हमने इसको तूर के दाईं जानिब से पुकारा, और रास की गुफ्तगू से इसको तकर्रुब अता किया। अल्लाह हमें भी अपना कुर्ब दे दे। अपनी मेहरबानी से इसके भाई हारून को नबी बनाकर इसके साथ मददगार के तौर पर दिया। आप भी दुआ करें अल्लाह हमारे भाई बहनों को भी दीन में हमारे मददगार बना दे। आगे भी दुआ आएगी, यहाँ भी है। अल्लाह ताला हमारे प्यारों को भी दीन में हमारे साथ लगा दे। सच्ची बात है, जब आपके अपने साथ लग जाते हैं ना, तो सोने पर सुहागा। अगर आपने घंटों में सफ़र तय करना था, तो आप मिनटों में तय करने लगते हैं। वस्कुर फिल किताब इस्माईल, और इस किताब में इस्माईल का जिक्र करो। वो वादे का सच्चा था, रसूल और नबी था। वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करता था, और अपने रब के नज़दीक वो पसंदीदा शख्स था। देखिए, हज़रत इस्माईल का जिक्र, तो तीन बातें बड़ी अहम हैं इनकी शख्सियत की। वादों के सच्चे, कहिए अल्लाह हमें भी बना दे, कमिटमेंट करके निभा लें, यही वादे की सच्चाई है। फिर नमाज का हुक्म और ज़कात का हुक्म। ये क्यों नहीं कह दिया खुद ही पढ़ लेंगे देखकर? इनको नहीं पता। और अगर आप थोड़ी सी ग्रामर जानते हैं ना, तो काना, काना वही है जिसको उर्दू में आप कहते हैं माजी इस्तमरारी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास कंटिन्यूस टेंस। कर रहे थे, करते ही रहते थे, करते ही रहते थे। क्या पता चला कि बच्चों को कोई काम एक दफ़ा नहीं कहना पड़ता, बार बार कहना पड़ता है। बस जब हम नेकी की बातें कहते हैं, हम इनको बार बार कहेंगे ना, फिर ये चिढ़ जाते हैं, फिर ये माइंड करते हैं, फिर ये डिस्टर्ब होते हैं। आप सच बताएं कि कोई भी काम हो, आप जो बच्चों को कहें, क्या एक दफ़ा कहने पे कर देते हैं? बेटा आ जाओ सहरी खा लो, और 2 मिनट में देखा वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठे, आप तो बेहोशी हो जाएंगे, इसको क्या हुआ आज? पहली बात भी उठ के आ गए, आपको तो उनके हाथ खींच के बिस्तरों से उतार के टेबल तक लाना पड़ता है। हर काम कहना ही पड़ता है, नहा लो नहा लो। बचपन में बच्चों को नहाना मुश्किल लगता है, नहाते नहीं। कपड़े बदलो कपड़े बदलो, यूनिफॉर्म बदलो, अपनी जूतियाँ सीख रखो। जब हर बात के लिए बार बार कहना है, तो फिर नमाज के लिए भी क्या कहना? पर कैसे कहना है? आप देखिए कि आप आज एक एक्टिविटी कीजिएगा। आजकल फ़ोन्स में सबके पास रिकॉर्डर मौजूद हैं, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें। बेटा उठिए, नमाज पढ़िए, ठीक है? अब आपने कह दिया, अच्छा अब आप रिकॉर्डर्स में ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि आप उसको दोहरा लें, उसको 10 दफ़ा दोहराएं, आप अपने को रिवाइंड सुने करके पीछे सुने, बेटा उठिए नमाज पढ़िए, बेटा उठिए नमाज पढ़िए, बेटा उठिए नमाज पढ़िए। एक रिकॉर्डिंग जब बार बार सुनी जाए, तो वो सेम टोन में बोलती है या पहली दफ़ा ऐसे बोलती है, दूसरे उठो नमाज पढ़ो, उठते नहीं हो ये? अब इससे ऊपर मैं बोली तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा, ये अच्छा तरीका नहीं होता। پھر سلواتے سمائیں, خود اٹھا نہیں جاتا, گھٹنوں کی درد ہیں, یہاں بیٹھ کے وہاں والوں کو اوپر الگ اٹھ پڑو منافقو فلانو, نہیں کریں. ایک جیسے ایک ٹون میں, بیٹا اٹھیے نا, بیٹا اٹھیے نا, بیٹا اٹھیے نا. اور ایک بڑی اچھی ٹپ دوں آپ کو, یا تو الٹی پڑے گی یا سیدھی پڑے گی, بچوں کے پاؤں دبانے شروع کر دیں, سوتے سے اٹھانا ہے نا, اٹھو بیٹا نماز پڑھو اور پاؤں دبائیں, گدگدی کریں. ہیں وہ کہہ رہی ہیں اور سو جائیں گے, نہیں وہ انسان کے بچے ہیں, ان کو پتہ ہے اماں پاؤں دبانے لگ گئی ہے. پھر دیکھیے ان کو بتائیں, بیٹا آپ نہیں اٹھیں گے تو میں آپ کے پاؤں دباتی رہوں گی, اور نہ اٹھے تو مور زور سے منہ پہ پانی کا چھٹا مارے. اتنے لاڈ دیکھنے کے بعد تو پھر سختی کر سکتے ہیں نا, لیکن کہیں آپ کو ہی کہنا ہے. آپ کے ماں باپ نہیں پڑھتے نا, آپ ان کو کہیں, اور اگر آپ کے بچے نہیں پڑھتے تو آپ ان کو کہیں. آپ دیکھیے گا یہ کہنے سے ہوتا ہے, بیوی نہیں پڑھتی شوہر کے, شوہر نہیں کہتا بیوی کے. اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی شوہر کہتے میں تمہارے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا, شوہر نماز نہیں پڑھتا بیوی کہتے میں آپ کی کمائی نہیں کھاؤں گی, یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے, اگر شوہر نماز نہیں پڑھتے مت کھائیں آپ ان کی کمائی سے. بہت بھی اگر ضرورت ہے نا تو دو لقمے کی روٹی لے لیں اور ان کو بتائیں کہ میں نہیں لوں گی آپ کے ہاتھ کا. یہ جذبات کی مار, یہ جذبات تو اتنی بڑی طاقت ہے. آپ دیکھیں جذبات سے تو زندگی شروع ہوتی ہے, یہ ایموشنز ہی ہیں تو جو انسان کا وجود بنتا ہے. یہ جذبات نہیں ہوتے نا تو ہم کچھ نہیں ہوتے, یہ جذباتی مار دیں اپنوں کو. یہ ہم ٹنڈے ٹنڈے بیٹھے ہیں, نہیں کوئی بات نہیں, ویسے نماز نہیں پڑھتے لیکن ہیں بڑے اچھے, ویری نائس, ہیں بڑے نیک, بس روزہ نہیں رکھتے, ہیں بہت اچھے اخلاق کے, بس بیٹی کو اچھے برے کپڑے گندے کپڑوں میں دیکھیں ان کو غصہ نہیں آتا. یہ کوئی معیار نہیں ہے, اٹس اے بٹر ٹروتھ ریئلی, مانیے نہ مانیے. یہ جو میں اور آپ پالتے رہتے ہیں نا 10 سال تک بے نمازی, اور اس کے بعد 15 سال تک پھر بے نمازی, پھر غلط آتے ہیں, یہ پھر بعد میں ہمارے آپس کے تعلقات بگاڑتی ہیں. بیسٹ کپل وہ ہے جو ہر معاملے میں اللہ کے حکموں پہ چلے گا, نہ ایک دوسرے کو بھول دیں, نہ ویلنٹائن پہ ایک دوسرے کو آئی لو یو کہیں, اچھی نہیں بہے گی. اگر نماز کے وقت میں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں, روزے کے وقت پہ روزہ رکھ رہے ہیں, یہ ہے اصل میں مینٹل ہارمنی. اس کے ساتھ جوڑیں, یہ جو ڈس آرڈر کے ساتھ پھر سسٹرز جیتی ہیں یا جو برادرز ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتا برادرز کی کیا مشکل ہے, وہ بیوی کو نماز پہ کیوں نہیں لگا سکتے, وہ تو زبردستی کر سکتے ہیں. تو اپنی بیویوں اور اپنے شوہروں کے پیچھے لگ جائیں, لیکن خدا کے لیے اچھے طریقے سے. وہ ٹیپ والی مثال یاد رکھیے گا, آپ میاں کے پاؤں دبانے شروع کر دیں, کہنا ٹھیک ہے پہلے سارے دن کام کر کر کے تھکا ہوں, ہیں اٹھیں گے نہیں, نہیں پھر آخر میں پانی کا چھیٹا بھی تو پھینکنا نا. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جوڑا کتنا پیارا ہے کہ ایک اگر سو جائے تو دوسرا اس کی آنکھوں پہ پانی ڈالتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے تو وہ نہیں اٹھتا, اٹھو نماز پڑھو. دیکھیے دین کا کام کرنا ہے تو گھر والوں کے ساتھ اچھے تعلقات. میں آپ کو یہ دھیمی آواز سے بھی کہہ دوں, میں چیخ کے بھی کہوں, لیکن میں آپ سب کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گلوب میں, آپ سب کو نصیحت کروں گی, گھر والوں سے اچھے تعلقات رکھیں, اپوزٹ ایج پہ کبھی نہ لائیں, چڑ نہ چڑھائیں. اگر آپ نے چڑ چڑھا دی نا, وہ اور بات میں آپ کو بھی برا کہیں گے, آپ کے اسکول کے نام کو بھی بدنام کریں گے, آپ کے ٹیچروں کو تو پتہ نہیں وہ کیا کچھ سناتے ہوں گے. آپ اپنا معاملہ ان سے اچھا رکھیں اور اللہ کے دین کے لیے رکھیں کہ اللہ کا کام کرنا نا تو میں نے خدمت کرنی ہے, اس لیے آج میں نے یہ جوتے پالش کرنے ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ, وہ بھی انسان ہے, کوئی پتھر دلوں سے نہیں ہماری شادیاں ہوئی ہوئیں, کوئی خراب لوگوں سے نہیں ہوئی, سب اچھے ہیں ماشاء اللہ. ماں باپ نے کوئی ایسے نہیں پلے ڈال دیا ہمیں کسی کے, اچھے شریف لوگوں سے ڈالا ہے, لیکن حالات اور وقت حالات کو خراب کرتے ہیں. اپنے اندر نرمی لائیں, عاجزی, سادگی, لیکن ساتھ اپنے دین پہ جمے رہیں. میں نہیں مانوں گی, آپ مان جائیں تو ٹھیک ہے, یہ انداز رکھیں گے, اور ساتھ ان کی پسند کے کھانے بنائیں, ان کی پسند کے کپڑے پہنیں, آپ ان کو خوش رکھیں. جہاں کر سکتے ہیں وہاں کریں. ہمارا مسئلہ یہ کہ جب چڑ چڑھتی ہے نا, پھر ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے, یا کرتے ہیں تو اوپر تھوڑی سی راکھ ڈال کے کرتے ہیں, سلواتے ہیں سناتے رہتے ہیں, تعلق خراب ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک نبی کا نام لے کر اللہ نے گھر والوں کی بات کی ہے, بیوی بھی آتی ہے اس میں, بچے بھی آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل والا بنا دے. اب اس کے بعد حضرت ادریس, جن کا ذکر بہت کم ہے قرآن میں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا, اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو, وہ ایک راست باز انسان تھا اور ایک نبی تھا, اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا. یہ سارے لوگ, اولئک الذین انعم اللہ علیہم, یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا, آدم کی اولاد میں سے, اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا, اور ابراہیم کی نسل سے, اور اسرائیل کی نسل سے, اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیتیں ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے. کیا خوبیاں تھیں ان کی, सच बताएं कि हमें भी रोना आता है कुरान पढ़ के? कब रो रहे, फूट फूट कर रोए और सजदों में चले गए। खूबियाँ देखिए, सिद्दीकियत भी है, घर वालों की फिक्र भी है, अल्लाह के दीन के लिए तड़पना भी है। अल्लाह क्यों ना ऐसे लोगों से प्यार करें? देखिए सारे ही अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं, लेकिन अल्लाह इन नबियों की तारीफ़ करता है। ये अच्छे काम करते थे, ये खूबसूरत दर्जे के लोग थे, तो इसलिए ऐसे लोगों से प्यार करना है, ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाना है। अगर हम अपने ये स्टोरीज अगर अपने बच्चों के साथ शेयर करें तो उनके भी तो यही रोल मॉडल्स बनेंगे। वो जो फिल्में ड्रामे देखते हैं फिर वही चीज़ें वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि घरों का माहौल खूबसूरत हो, बाहर का माहौल अच्छा हो। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसके बाद क्या रह जाएगा? बहुत दिन आराम करने के, बहुत कुछ करना है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे कि हम अच्छी तरह से अपने आप को लेकर चलें। नबियों का सिलसिला पूरा हुआ तो बाद में क्या हुआ? फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अदाउ सलाह, फिर इनके बाद वो नाखल्फ लोग इनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को तर्क किया। जैसे रोशनी जितनी भी हो ना, उसके बाद रात आ ही जाती है। नबियों का दौर गया, उनकी नस्लों में बुरे लोग आ गए। और नमाजें क्यों ज़ाया हुई? अगला ही लफ्ज़ पढ़ लीजिए, वत्तबउ शहवात, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। आप लिखिए एक जुमला, मेरी नमाज क्यों छुटती है, या नमाज लेट होती है, कज़ा होती है या नहीं पढ़ती। आप नोट करिएगा, कोई ना कोई नफ्स की ख्वाहिश होती पीछे। या सो रहे थे, नफ्स की ख्वाहिश है, कमा रहे थे, माल चाहिए, जॉब पे थे, दोस्तों में बैठे, बातों में लग गए, किचन में ज़रा ही खाना ज़्यादा ही बनने लग गया। हमारी नमाज़ें ख्वाहिशात की वजह से मुतासिर होती हैं। तो नियत करें, चूल्हा बंद, बिस्तर रैप अप जब नमाज का वक्त आ गया। हय अलस सलार हय अलल फलाह का मतलब ही है, कम। आपकी अम्मी आपको बुलाएं तो आप कब जाएंगी? जब आप फारिग होंगी। सास बुलाती हैं पानी दो, कब जाएंगी? सुनते ही जाना होता है। अच्छे लोग होते हैं जो बड़ों की बात सुनते ही आ जाते हैं। अल्लाह पुकारता है, आ जाओ, नहीं अल्लाह काम कर रही हूँ, आ जाओ सो रही हूँ, आ जाओ, नहीं मैं तो स्कूल में हूँ, आ जाओ मैं तो जॉब पे हूँ। और रात को इकट्ठी 5 नमाज़ें पढ़ेंगे जाके। तो वो जैसे कोई पानी मांगे ना, सारा दिन मांगता रहे, तो रात को आप एक ट्रे में, एक गिलास में पानी, एक में शरबत, एक में जूस, एक में दूध डाल के ले जाएं। ये सुबह जो मांगा था, ये दोपहर वाला, ये शाम वाला, वो कहेंगे सब वापस ले जाओ, मुझे प्यास ही नहीं है। नमाज की रूह ये है, राइट अवे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो कज़ा है, या ये तो अल्लाह की रहमत है कि ड्यूरेशन दे दी कि चलो फजर में आधा पौना घंटा होता है, जोहर में 2-3 घंटे होते हैं, असर में 3-4 घंटे होते हैं, मगरिब में 1 घंटा होता है, ईशा में फिर घंटा। ये रहमत है। बींग अ मुस्लिम इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल असलम तो रब्बिल आलमीन। बींग अ मुस्लिम फौरन, राइट अवे। और अजान का फलसफा ये है, कॉल आ गई, आई एम गोइंग। ये जो आप देखते हैं ना सऊदी अरब में, फ़ौरन शटर गिरने लगते हैं, नमाजें पढ़ने के लिए लोग दुकानें छोड़ते, ये है थीम। निकलो, उठो, आज से ये सोचे जब अजान हो गई, अल्लाह ने आपको पुकारा, बैठे रहेंगे डिली डाली करते रहेंगे क्या होगा? फिर डिली डाली नमाजें। तो ये बाद लोग इस प्ली को कहते पढ़ लेती हो ना, और मैंने बाद लोगों को नेकियों के काम में नमाजें डिले करते देखा, मेरा बड़ा दिल डरता है उससे। घर जाके पढ़ेंगे, अल्लाह ना करे घर ना पहुँचे तो क्या होगा? अल्लाह को गुस्सा आ गया रास्ते में, गाड़ी को कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे आप? तो नियत करें, मैं भी आप भी, जब जहाँ जिस काम में वहीं बंद करें। आधे चावल उबले हैं, आधे नहीं उबले, बंद करें। ये कोई पहली दफ़ा मगरिब की अजान नहीं हुई, आपको पता था होने वाली, अब चावल डाले ही ना। रोटी क्यों डाली तवे पे आपने, अगर आपकी नमाज का वक्त हो गया तो? एक मोमिन की घड़ी जो है ना, वो नमाजों से चलती है। 5 नमाजें आपके मेरे वक्त को मैनेज करने आती हैं, फिर मर्जी से अपने ही पढ़नी है, वो अगले इधर के झोंके उधर के धक्के, तो वो धक्के ही होते हैं। वक्त की नमाज और बेवक्त की टकरें। अल्लाह ताला मेरी आपकी नमाजों को बेहतर कर दे। और जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का मतलब समझ आ जाता है ना, तो फिर बात बनती है। तो करो क्या? इल्ला मन ताब वा आमन वा मिला सालिहन, बस करीब है कि वो गुमराही के अंजाम से दो चार होंगे। अलबत्ता जो तौबा करें और ईमान लें और नेक अमली की रविश को इख्तियार करें, वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हमें भी जन्नत में ले जाए। और इनकी ज़रा बराबर हक तलफी ना होगी। इनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं, जिनका रहमान ने अपने बंदों से दर पर दावादा कर रखा है। देखिए अल्लाह आपसे वादे करता है, फिर क्या मैं और आप उसके वादों पर यकीन नहीं करेंगे? और यकीनन ये वादा पूरा होकर रहना है, वहाँ कोई बेहुदा बात ना सुनेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे। और इनका रिस्क इन्हें पै हम सुबह शाम मिलता रहेगा, ग्रोसरी ख़त्म नहीं होगी जन्नत में। और सुबह को भी खाएंगे और शाम को, तो ये लंच किधर गया? अच्छे लोग 2 वक्त ही खाते हैं, सिर्फ रमज़ान में। आप कहेंगे हम तो एक वक्त खा रहे हैं आजकल, हर वक्त ना खाएं, मुनासिब खाएं, अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, लेकिन इस रमज़ान से ये नियत करते हैं सुबह शाम की आदत डालें। ये जो हर तीन वक्त का खाना है ना, ये औरतों को बिज़ी रखता है। सुबह का नाश्ता ठीक कर लें, अच्छा खा लें, एनर्जेटिक खाएं, फ्रेश खाएं, हेल्दी खाएं। रोटी सालन से अच्छा क्या होगा, जिससे आपकी एनर्जी भी पूरी हो गई। अब आप एक पुराना ढीला सा टोस्ट पकड़ पे उस पर वो प्लास्टिक तुम्हारा बटर लगा के खा रहे हैं, तो आपने तो इधर से उधर जाके थक ही जाना है ना, फिर घंटे बाद याद आना है भूख लग गई है। इतना वक्त तो नहीं होता ना कि बंदा हर वक्त अपने लौट करता रहे, जो खाना है अभी रखो इधर, ये भी खा लो खा लो खा लो खा लो, और मुनासिब खा लिया चाय का गुण, अब 7-8-9 घंटे तक किचन बंद, ताला लगा दो, अब नहीं खुलेगा, क्लोज डाउन। जिनके घर ऐसे हैं ना, वो दीन के लिए बहुत वक्त पाते हैं। आजकल रमज़ान में क्यों आना आसान है, क्योंकि दोपहर का खाना नहीं है। होता लंच तो 3 बजे आपको बुलाते हम, तो फिर देखिए क्या आपका हाल होता। तो मैनेज कीजिए, अगर रमज़ान के बाद भी आपने कुछ करना है ना दीन का काम, तो उसके लिए अभी से नियत करें कि मैंने अपने खाने पीने को कैसे मैनेज करना। और कुछ लोगों के घर में सारा दिन किचन बंद नहीं होता, उनके किचन और होटल के किचन में कोई फ़र्क नहीं होता। जब कोई आया ऑर्डर, अम्मी रोटी पकाओ, चलो तवा रखती हूँ, चलो अब गरम, एक ही रोटी, एक का सालन, एक को फला, एक को फला, एक का भी ख़त्म नहीं हो, पहले को फिर भूख लग चुकी होती है, और अम्मा जी सारा दिन किचन में बैठी खिदमत खल करती रहती हैं। तभी तो फिर बच्चों को लगता है ज़िंदगी का मकसद खाना पीना। हमारी अम्मी हमसे इतना प्यार करती हैं, जो कहते हैं वो बना के देती हैं। नहीं बेटा, अम्मी जी को भी कुछ करना है अपने लिए, ये खाना पिलाना हर वक्त नहीं, इतना ना पानी दें पौधों को कि वो गली जाएं, ये हर वक्त के लाड और खाने, रोज़ पिज़्ज़े, रोज़ नहीं, एक दिन हफ्ते में उनकी पसंद का खाना बनाएं, दैट्स इट। 6 दिन वो आपकी पसंद का खाएं, जो आप खाते हैं आपके मियाँ खाते हैं वही वो खाएंगे। कई घरों का तो हाल जाके जो खाना पकता है वो मियाँ बीवी बेचारे खाते हैं, और बच्चों ने तो बाहर से खाना है, तो ये अच्छी तरीके नहीं है। ये चीज़ें फिर मकसद से हटाती हैं। यही देखिए बनी इसराइल की में कुछ थी कि उन्होंने जायकों में के पीछे पड़ कर अल्लाह की नेमत को छुटला दिया, जन्नत में जाएंगे खाएंगे। अब आपको गम तो नहीं लग गया कि जन्नत में भी जाके दो ही वक्त खाना है, लेकिन वहाँ ये भी तो कहना, अल्लाह फी हम आयशता हूँ माँ यदा हूँ, जो चाहो जा, दो वक्त अल्लाह खिलाएगा, बाकी वक्त आप खुद ऑर्डर करते रहिएगा। हैं, ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने उन बंदों को बनाएंगे जो परहेजगार है। थोड़े दिन की देर है, थोड़ा सा बच्चों इंतज़ार करो। अपने बच्चों को आप कहते हैं ना, बेटा थोड़ा सा इंतज़ार करो। देखिए आजकल रमज़ान है ना, तो लोग क्या सोचते हैं, थोड़े दिन की बात है, चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, चलो भूख ही है ना, चलो थोड़े दिन थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं ना। आप ये सोचा करें कि जन्नत बिल्कुल करीब है, और हर वक्त ये सोचा करें मेरी मौत बड़ी करीब है, चल ना थोड़े दिन की तो बात है। आपको कोई कहे ना कि मिसाल है कि देखिए आज 15 तारीख है, कोई कहता है कि कल आपको मौत आ जानी है, तो आज आप अपने ऊपर इस्लाम के कौन कौन से हुक्म को लागू करेंगी? तो मेरे हाल आप सारी कर लेंगी, पर्दा करेगा कोई? ठीक है कल तक घर से ही नहीं निकलूँगी, पर्दा कर लिया मैंने, सब छोड़ देते हैं ख़राब चीज़ें क्योंकि कल तो छूट जाना है। तो जब मैं और आप जन्नत को और मौत को करीब समझेंगे ना, तो बहुत आसान होगा अमल करना। 4 दिन की बात है कह लें, लोगों ने जो कहना है कर लिया, 4 दिन की बात है छोड़ दो छोड़ दिया, 4 दिन की मुश्किल है कर लो। लेकिन जब हम ये दुनिया को लंबा देखते हैं ना, कोई ला तमद्दन नाई नहीं का इला मज़ाहरा, लंबी नज़रें। जब आप छोटा वक्त सोचते हैं ना दुनिया का, तो आसानी अल्लाह की बात, चल अल्लाह 4 दिन की बात है, मान ही लेती हूँ तेरी, कल तो मरना ही है। लेकिन जब हम लंबी जिंदगी, लंबी समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, तो हम कहते हैं ड्यूरेबल, पायदार, 10 साल की गारंटी। भाई उसकी तो 10 साल की गारंटी है, आपकी कितनी गारंटी है? फिर इंश्योरेंस, इतनी इंश्योरेंस, टूट गया तो ये, गिर गया ये, टूट गया तो इसकी तो कंपनी दे देगी, आईफोन कंपनी। आपकी उंगली टूट गई तो क्या होगा, आपकी हड्डी टूट गई तो क्या होगा? डॉक्टर पैसे तो दे देंगे, इलाज तो कर देंगे अगर इंश्योरेंस ली है, आपकी हड्डी का दर्द कौन सहेगा? आप अल्लाह से जोड़े अपने आप को। जब इस दर्जे पे इंसान सच्चा हो जाए ना, तो अल्लाह ताला मुश्किलों में डालते भी कोई नहीं, कोई नहीं। आपने इतने ख़राब हालत में लोग देखे दुनिया में, कोई नहीं दम घुटे हुए लोगों के, कोई नहीं मरे हुए, कोई रिस्क के बगैर नहीं जीता, सबको अल्लाह ने दिया हुआ, उसका वादा है, वो रज़ाक भी है। असल बात यह कि शैतान हमें डरा देता है, कहता है बस तुम कुछ नहीं करना, खबरदार ज़िंदगी ख़राब। आज से अपने लिए सबक लिखे, आज के पूरे पारे में मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि मौत को और जन्नत को करीब करो, इतात आसान हो जाएगी, फैसले करने आसान हो जाएंगे। तो कम अज़ कम हम अपनी आखरत को सामने रख के जिए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अब इसके बाद सूरत का ततिमा शुरू हो रहा है, कहानियाँ अम्बिया की सुना दी, अब नबी सल्लम से कहा जा रहा है, वमा न तनज़्ज़ुलु इल्ला बिअम्री रब्बिक लहू मा बैना अयदीना वमा खल्फना वमा बैना ज़ालिक। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते, जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे है, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پہ ثابت قدم رہو۔ دعا کریں ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس پہلے اس کو پیدا کر چکے جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گٹ لا کر ان کو گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ استغفر اللہ، چھانٹی ہو رہی ہے، کس کو کس ٹیمپریچر پہ ڈالنا ہے فرشتوں سارٹ آؤٹ کرو۔ اوون میں چیز رکھتے ہیں نا تو آپ بھی سوچتے ہیں چکن کب ڈالنا ہے، چپس کب رکھنے ہیں، بریڈ کب رکھنی ہے۔ اللہ کے پاس ہر ایک کا ٹیمپریچر کنٹرول ہے، جو جتنا گناہ گار اس کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ، اس کا ٹائمر اتنا لمبا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یہ ہے زبردست آیت سورت مریم کی، صحابہ کانپ جاتے تھے اس کو پڑھ کے۔ پھل سرات جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو گزرنا ہے۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جہنم کے اوپر پھل سرات، ڈائسیکشن روم ہے، جو بچی کھچی کھوٹ کھپٹ حرام کا گوشت نافرمانی کی چیزیں رہ چکی ہوں گی نا قبر کے عذاب سے بھی اور میدان حشر کے میدان کی تکلیفوں سے بھی جو نہ بچی، ان کو پل سرات سے گزار کر پھر سینکا جائے گا، پھر نچوڑا جائے گا وہاں سے۔ کلوب ہے، حدیث میں تھے آنکڑے ایسے کانٹے نہیں ہوتے ہکس، اور اس ہکس کے بل ان عورتوں کو لٹکایا جائے گا جو اپنے جسم کی نمائش کرتی تھیں، جو حرام کے بچے اپنے خاندان میں لے آتی تھی، ان کو پل سرات پہ لٹکایا جائے گا آنکڑوں کے سب ساتھ۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، اس پہ آپ سنیے قیامت کا بیان، اس بک میں ایک پورا ٹاپک ہے، خود ہی پڑھ لیں کتاب میں سے اگر سننا نہ چاہیں، کہ کس طرح سے پل سرات پہ حالات ہوں گے۔ ہر بند اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا، آگے بھی پڑھیں گے سورۃ تحریم سورۃ حدید میں، اندھیروں میں سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور چیخ رہے ہوں گے، اور ایمان والوں کو کہیں گے ٹھہر جو ٹھہر جو، تھوڑی سی روشنی ہمیں بھی دے دو۔ اور یہ وہ جگہ جہاں منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا۔ آج تو ہم بڑی بات کہتے ہیں نا، دیکھنا کچھ بھی ہوگا، تھوڑی سی آگ ہے نا سینک لیں گے، ٹھنڈ بھی تو بڑی لگتی ہے ہمیں، وہاں جا کے سب باتیں کھل جائیں گی۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے؟ اب یہ جو لوگ شو مارتے ہیں نا، ڈسپلے کلچر، اس کی بات ہے، کس کا گھر بڑا، کس کی بیٹھک بڑی، کس کا ڈرائنگ روم اچھا، کس کا فرنیچر قیمتی، یہ اب باتیں ہیں۔ کہ جب دنیا میں اور کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا تو لوگ انہیں بے جان چیزوں میں پڑتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ بے جان چیزوں کی محبت دل کو بے جان کر دیتی ہے۔ یہ گھر بت بن جاتے ہیں، کسی کے سفید کشن پہ کوئی پاؤں رکھ دے جان نکل جاتی ہے، کسی کا بچہ آ جائے کرسٹل کا بول پکڑ لے جان نکل جاتی ہے۔ ہمارے گھر بے روح ہیں اگر سامان سے اٹے پڑے ہیں، لیکن وہ اللہ کی یاد نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، اور لوگ آتے ہیں ہماری چیزوں کو دیکھ کے وہ حسرتیں بھرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ساری باتوں کی روشنی میں نایتوں کو سنیے گا۔ فرمایا، کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سب سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھڑی بھی ہوتی تھی۔ ایک شادی کی ڈیکوریشن پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے، کسی قریب کے ذریعے کے تحت، اور ہم نے ایک ایسا بھی وقت گزارا کہ ہماری کلاس ایک ہوٹل میں ہوتی تھی، تو جب ہم اگلے دن کلاس میں جاتے تھے، اسپیشلی منڈے کی کلاس میں، تو سیٹ اپ بدلا ہوتا تھا۔ کیا ہے، کل شادی تھی، وہ جتنے پھول ڈیکوریشن تھی وہ بیچارہ لڑکا لا کے اس ہال میں رکھ دیتا تھا، ہم ان پھولوں میں مفت میں گزارا کرتے تھے، ہماری کلاس میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ اور مطلب وہ لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ ہزاروں ڈالرز اور پاؤنڈز صرف ہال کی ڈیکوریشن پہ دیتے ہیں۔ ایک کسی کی شادی ہوئی تھی تو فریش روزز، یعنی ایک ایک روز ہوتا ہے نا، وہ اتنے تھے بنچتے، میں سمجھی کہ یہ آرٹیفیشیل ہیں، لگ دیکھنے میں آرٹیفیشیل رہتے، تو جب کسی نے غور کروایا کہتے ادھر آئیے دیکھیے، ایک ایک پھول ہے، اور شاید اگر مجھے بھول نہیں رہی تو $7,000-8,000 کا سیٹ اپ تھا۔ یہ رونے کی بات ہے۔ ये है बड़ी हुई, हद से बड़ी हुई डेकोरेशन। अल्लाह ये नहीं कहता गंदी चादरें बिछाओ, टेढ़ा बिछाओ, प्लास्टिक बिछाओ भी तो टेढ़ा, फूल भी रख लो, लेकिन हद में रहो। जब हर गम में ये लोग चार चार घंटे पहले जाके शादियों की तैयारियां करते थे, कई दफ़ा मैं क्लास जल्दी अटेंड कर ख़त्म करनी पड़ती थी, क्योंकि जिनकी रात को शादी है उन्होंने अब आ गए हैं 2 बजे सेट करने, चार चार पाँच पाँच घंटे सिर्फ हॉल डेकोरेट होता था। और जो हम उनकी बुखलाहटें देखते थे, ऐसे लगता था जन्नत चली जाएगी अगर ये कोई चीज़ मिस हो गई तो। ऐसे क्रेविंग होती है लोगों को कि बस आज जो शादी है ये तो कहें कि है नहीं। वही बात देख लीजिए जो कुरान कह रहे हैं, आपसे मुझसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं बताओ किसकी महफिल अच्छी है, अय्युल फरीकैन खैरु मकाम व अहसनु नदिया। तो मुसलमान को तो ये नहीं सचता, सच्ची जो बात है उसकी तो नज़र आखरत पे, और वो इम्प्रेस भी कोई नहीं होता। हम अक्सर सोचते थे इन चीज़ों पे लोग पैसे लगाते हैं, इतनी बेकार चीज़ों पे, इसकी जगह तो सोने के 4 सेट और ले देते दुल्हन को, तो चलो कुछ पहनती, तो ये तो घर भी नहीं लेके जाएंगे लोग बाद में। एक जगह हम शादी में थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि अब जो इधर डिस्प्ले एंड पे जिसका जो दिल करता ले जाए। लोगों ने इतने बड़े बड़े वॉज उठाए, कहते हुए इट्स ऑलरेडी पेड, टेक एवरीथिंग। और यकीन करें यानी मैं कह सकती हूँ कि 50-50 पाउंड और डॉलर्स का भी एक एक उसमें वॉज और डिस्प्ले था। तो उन्होंने माइक पे अनाउंस किया था जिसको जो डेकोरेशन लेनी है ले जाओ, और मैंने लोगों को सरों पे रखे हुए इतने इतने बड़े बक्के और देखे कि उठा नहीं पा रहे, गाड़ियों में, लेकिन ललचा रहे थे। 200-200 पाउंड की एक एक डेकोरेशन पीस था, कहा ले जाओ सब चला जाएगा। तो गुजरते हुए उतर आए वापस आए तो पीछे ना स्वीट डिशेस के ऐसे काउंटर लगे हुए थे। पहले ही खबर फैल चुकी थी हॉल में कि आज आपको पता है 60 या 70 स्वीट डिशेज सर्व हो रही हैं। तो जब वहाँ आए ना तो देखा तो मेजे किसी ने ला के अंदर कुछ दे दिया था कि आप भी ले, तो मैंने वो नहीं खाना था, जो मैंने खाना वो प्लेट ले ली, जो नहीं तो मैंने सोचा इधर पड़ी रही तो बैरों ने फेंक देनी है। तो मैं ये सोच के साथ उस प्लेट को अनटच थी लेके इधर आई कि उधर रख दूँ जहाँ ये सर्व कर रहे हैं। तो उसी तरह आई तो वहाँ गोरी औरतें भी खड़ी थी, तो हेलो है, तो मैंने कहा कैन आई कीप दिस, इज़ क्लीन एंड दिस, कहती डोंट वरी इट ऑल विल गॉन, सब कहती अभी क्या होगा कि हम सारा रोल कर, इतने बिलीव मी केक्स और स्वीट्स और बिलीव मी अनइमेजिनेबल थिंग्स, और लोगों ने चखा चखी किया होता, आप सब जानते हैं कितना कोई खाता है, कुछ का टेबलों पे बचा हुआ है, कहती ये सब गिर जाएगा। मेरे तो दिल पे चोट पड़ी, 1 किलो मिठाई कितने की, और वो शायद 20 किलोज़ के हिसाब से थी। कहती ये रूल नहीं है, हम रख नहीं सकते। मैंने कहा आप ले जाएं, फिर उस उधर हमने खड़े होकर बात की, उसके मैनेजर को बुलाया क्या करते, कहते ये सॉल इज़ ट्रू बट हमें लीगली भी इजाज़त नहीं अगले दिन बेचने की, और हम आप लोग ले जाएं, कहते आप जो मर्ज़ी ले जाएं, लेकिन ये सब फिक जाएगा। भी हमने खुद अपने राउंड टेबल सेटअप के ऊपर से डोंगे जो लोगों के आगे खाने के, क्योंकि एपेटाइज़र से पेट भर चुका होता है पहले ही जो खिला देते हैं, तो उन्होंने एज़ इट इज़ वो डोंगे देखने में रियल लग रहे थे, लेकिन बाद में समझ आई कि ये डिस्पोजेबल होंगे, बहुत ही खूबसूरत से। तो वो ट्रैश बैग लेके आई औरत, जो भी 2 चीज़ थे, डिशेज़ भी फेंक रहे, और जो पूरा रोल खाने का था वो सब उसके अंदर डाल डाल के ट्रैश करके फेंक रहे थे। ये इंसानों को तो सूट नहीं करता, और ख़ास तौर पर अगर मुसलमानों की गैदरिंग्स में ऐसे हो तो फिर यही तो वजह कि दीन गरीब है। आज दीन पे 4 पैसे लग जाए, लोग 4 सवाल करते हैं क्या ज़रूरत थी इसकी, देना पड़े 10 दफ़ा सोचने, कहते हैं चलो अब दे ही दिया होगा किसी ने, हम क्यों दें। हमारा ये हाल है, दीन के नाम पे हमारा इतना दिल घुटता है। मैं कहती हूँ अल्लाह क्या सोचता क्या होगा हमारे बारे में, हमारे दिलों की घुटन दे के अल्लाह कहता होगा फरिश्तों देखो ये हैं जिनके बारे में तुमने हदशे किए थे, और अपनी ज़ात पे कहते कमाते किस लिए, है भी नहीं तो कर्ज भी ले लेंगे, 4 लोग मिलके शादी कर लेंगे, कोई मामू ने दिया, कोई पुप्पो ने, कोई चचा ने, शादी शान से करेंगे, क्या होगा उस शादी के बाद। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारी आंखें खोल दे। लोग चाहते ही ऐसा दीन है जिसमें इन चीज़ों को ना टच करें, हमारी खुशियाँ गम हम अपनी मर्ज़ी के करें, बस रमज़ान के रमज़ान एक दफ़ा के सपारा पूरा कर दें, सारे ही तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब्दीली चेंज दिल बदले। कुरान वही कुरान है जो मेरा आपका दिल बदले, और अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे। इनसे कहो जो शख्स गुमराही में मुबतला होता है इसे रहमान ढील दिया करता है, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज़ देख लेते हैं जिसका इनसे वादा किया गया, हाँ वो अजाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी, तब इनको मालूम हो जाता है किसका हाल खराब है और किसका जत्था कमज़ोर। मौत के वक्त तो फरिश्ते को डेकोरेशन नहीं मांग रहे होते ना, फिर पता चलता है कि कौन अल्लाह की नज़रों में बड़ा था या छोटा था। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं अल्लाह इनको रास रवि में तरक्की अता फरमाता है, और बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक जजा और इंजाम के एतबार से बेहतर है। $1 1 क्रोन भी बेकार ना लगाएं, उसको सदका जारिया बनाएं। अल्लाह क्या कह रहा है, ये बाकी बचेंगी कल जो तुमने इस डिब्बे में डाल दी, ट्रैश में भी जाता है वो भी डिब्बा है और सदका बॉक्स भी डिब्बा है। अल्लाह कहता है तुम्हें कल चाहिए तो इसमें डाल दो और आज चाहिए तो ट्रैश में डाल दो। और आखिरी आयतें आप देखिएगा कि किस तरह से تنہائی کا احساس دلایا جا رہا ہے. اصل میں سورت مریم جو ہے نا مجھے ہمیشہ بہت اداس کرتی ہے, پتہ نہیں کیوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری آیتیں اس کی بہت دل کو اداس کرتی ہیں. واقعی ایسے لگتا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں جس کی رونقوں میں کھوئیں. کبھی بچوں کی خوشیوں کا نام لیتے ہیں, کبھی بیٹے نہیں مان رہے, کبھی بیٹیوں کے بڑے شوق ہیں. کوئی کہتا ہے میری زندگی کا ڈریم یہ ہے کہ میں اپنی شادی دھوم دھام سے کروں. پہلے لوگ کہتے تھے ماں باپ کریں ہماری شادی دھوم دھام سے, میں نے آج یہ جملے سننے شروع کر دیے, بچے خود کہتے ہیں ہم کما اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے شادی دھوم دھام سے کرنی ہے. اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے پاس کیا ہے. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا, کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے لیا؟ ہرگز نہیں, یہ جو کچھ بولتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور بھی اضافہ کریں گے. جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے, یعنی جس پہ یہ مان کر رہا ہے, ریج رہا ہے, یہ وہ سب کچھ تو ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا. 3 سیکنڈ تک سوچتے ہیں میری کون کون سی چیز میرے ساتھ قبر میں جائے گی. کچھ بھی نہیں جائے گا. کوئی میرے پسند کے جوڑے میں تو مجھے نہیں کفنائے گا, کفن میں دفن دیں گے. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ دنیا کو جھوٹا خدا بناتے ہیں نا کہ یہ ہماری مدد کریں گے, ہمارا مستقبل سیکیور ہوگا. نہیں ہوگا, وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ دیتے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسارے. اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ نے کبھی نوٹ کیا صرف دینداروں سے لوگوں کو اتنے شکوے کیوں ہوتے ہیں یا سیاستدانوں سے؟ یہ شیاطین ہے. جب کبھی کسی کے دین پر تنقید کرنے کو دل چاہے, کوئی گلے کوئی شکوے دین والوں سے, یہ قدر نہیں کرتے, یہ ویسے ویسے, کہیں بھی ہو سکتا ہے نا, مسجدوں والوں سے گلے, اسکولوں والوں سے گلے, آرگنائزیشن سے گلے, تو اس آیت کو یاد کیجئے گا کہ شیطان نیکی کے کام والوں کے لیے آپ کے دل میں خیال ڈالتا ہے, حق کی مخالفت پر اکساتے ہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو, ہم ان کے دن گن رہے ہیں. وہ دن آنے والا جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے. امیجن کریں آپ کو اللہ تعالیٰ ہوسٹ کریں گے. کبھی سوچیں آپ کو کوئی انویٹیشن آئے, سرپرائز, ہوسٹ کا نام نہیں پتا, شہر کی سب سے پاؤش بلڈنگ میں بیسٹ ماحول, بس وہاں پہنچ جائیے, پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کے ہوسٹ کون ہے. آپ تجسس و سسپنس کے مارے کہ مجھے کس نے اتنی بڑی جگہ پہ بلا لیا. ڈرتے کانپتے پہنچتے ہیں اور وہاں آپ کا رب کھڑا ہے اور وہ آپ کو ہوسٹ کر رہا ہے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, اور وفد بنا کے اکیلے بھی نہیں بلائے گا, پورے گروپ کو بلائے گا. اللہ آپ سب کو بلا لے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اس وقت بھی, جو سن رہے ہیں وہ بھی, جو سننے میں مددگار ہیں وہ بھی, سب کو اللہ اپنے پاس بلائے. آؤ میرے پاس, میں تمہیں تمہاری مہمانی کروں. اور آپ کو تو جنت میں جا کر پہلا کھانا اللہ کی طرف سے ہوگا, اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کھلائیں گے آپ کو. یہ نہیں بتاؤں گی کیا, بس سوچیں کیا ہوگا, اور جو وہ کھلائے گا وہ کیا ہوگا جو زندگی بھر ہمیں اتنا پیارا کھلاتا رہا. ہر مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانگ کر لے جائیں گے. تصویر کا یہ بھی ایک رخ ہے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہو. وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. سخت بےہودہ بات ہے جو یہ کہتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں اٹس اوکے, ریلیجن از دیئر پرسنل میٹر. دیکھیے جب لوگ خدا بنا اللہ کے بیٹے بیٹیاں گھڑتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں, زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں. اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا, رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ لفظ فردن فردن کو نوٹ کریں, ون بائے ون, انڈیویجولی. دو کے ساتھ جائیں نا تو ذرا ڈر کم لگتا ہے, کہتے تم بھی ذرا میری مدد کرنا, میں تمہارے ساتھ ہوں, فکر نہ کرو. آپ کو اکیلے کو بلایا جائے گا, اندر ادھر آؤ, حساب دو, کیا کیا نعمتوں کے ساتھ, وقت کدھر لگا, اولاد کدھر گئی, سکلز کا کیا بنا, اللہ کا دین اس طرح بیار و مددگار پڑا تھا, تم نے کیا کیا, اپنے بچوں کو تو تم کبھی تنہا نہ چھوڑو, اللہ کے دین کو کیسے چھوڑ دیا آج کے مسلمانوں نے, صرف افطاری کروا کے نیکی مل گئی؟ نہیں, بڑی سخت آزمائش مسلمانوں کی. ہم سوچتے ہیں وہاں ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا, سب کو اکٹھے ایوارڈ مل جائیں گے اور سب کو اکٹھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا. نہیں, فردن فردن, اونلی اکیلے. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں, ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. دعا کریں اللہ ہم سب ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھر دے, ایمان کی بنیاد پہ, کسی نام کی بنیاد پہ نہیں. اللہ مجھے سب دین والوں سے محبت دے دے, سب مسلمانوں سے پیار دے دے. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کلام کو ہم نے آسان کر کے آپ کی زبان میں اسی لیے نازل کیا کہ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو. ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے, آج پھر کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی کوئی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کبھی قوم عاد کا کوئی شخص, حضرت صالح کی قوم کا کوئی شخص؟ کوئی بھی تو نہیں ہے. تو اسی طرح ایک دن تم لوگ بھی نہیں ہوگے. تو بہت خوبصورت صورت تھی, تلاوت سنتے ہیں.